अपनी माँ को इस तरीके से देखकर आस्तिक बर्दाश्त नहीं कर सका। साइड में रखा हुआ अपना हॉकी बैट उठाया और सीधे जाकर अभय के पेट पर मारने लगा। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? तूने उन्हें रुलाने की हिम्मत कैसे की? मैं तेरी जान ले लूंगा। आस्तिक का ऐसा व्यवहार देखकर सीमा हैरान रह गई। वो जल्दी से आस्तिक की तरफ बढ़ती है और उसे पीछे खींचती है। प्रणाली भागकर अपने दोनों भाई बहनों के पास जाती है और उन्हें संभालती है। वो सारे बच्चे एक तरफ खड़े होकर रोए जा रहे थे। सीमा ने आस्तिक पर गुस्सा होते हुए कहा, आस्तिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा पर हाथ उठाने की? मैंने तुम्हें यही सिखाया है क्या? मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए? इस तरह की हरकतें करके तुम मेरी परवरिश पर सवाल उठाओगे? अभी की अभी माफ़ी मांगो अपने पापा से। आस्तिक गुस्से में कहता है, माँ, आप मुझे इस आदमी का सम्मान करने के लिए कैसे कह सकती है जिसे इस बात की भी शर्म नहीं है कि वो अपनी बीवी को चार बच्चों के साथ अकेला छोड़ रहा है? ये इंसान इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। और हाँ, आज के बाद ये इंसान मेरा बाप नहीं है। अभय वैसे ही बहुत गुस्से में था और आस्तिक की ये बात सुनकर तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो आस्तिक को बाजू से पकड़ता है और उसके गले को दबाते हुए उसे दीवार पर लगा देता है। आस्तिक तड़पने लगा था। वो हॉकी फेंककर छटपटाने लगा था, लेकिन अभय के हाथ आस्तिक के गले पर कसते जा रहे थे। आस्तिक का चेहरा लाल हो गया था और ये नज़ारा देखकर सीमा भी सकते में आ गई थी। सीमा जोर से चिल्लाती है और अभय के बाजू को पकड़ते हुए उसे पीछे खींचने लगती है और कहती है, अभय, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, वो तुम्हारा बेटा है, वो मर जाएगा। अभय ने जोर से सीमा को धक्का दिया, जिससे सीमा पीछे की तरफ गिर गई। अभय गुस्से में तीनों की तरफ देखकर कहता है, अगर अपने बच्चों की सलामती चाहती हो तो अभी के अभी डिवोर्स पेपर और प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करो और अपनी इन चारों गंदगी को लेकर निकलो मेरे घर से। सीमा हैरान नजरों से देखती है। आस्तिक का चेहरा लाल होता जा रहा था और उसकी सांस उखड़ने को आई थी। उसने बिना समय गवाए चुपचाप पेन उठाया और डिवोर्स पेपर और प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दिया था। साइन करने के बाद वो प्रॉपर्टी और डिवोर्स के पेपर अभय की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैंने साइन कर दिया, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया है, वो बच्चा है। अभय एक हाथ से पेपर अपने हाथ में लेता है और दूसरे हाथ से आस्तिक को वैसे ही दीवार पर लगाकर छोड़ देता है। एक तेज आवाज के साथ आस्तिक नीचे जमीन पर गिर जाता है। अभय सीमा को बालों से पकड़कर दरवाजे से बाहर करता है और साथ में चारों बच्चों को भी एक एक करके सीमा के ऊपर फेंकने लगता है। वो तो सीमा ने चारों बच्चों को जल्दी से पकड़ लिया था, वरना वो दीवार से टकरा जाते और फर्श पर गिरकर घायल हो सकते थे। अभय ने सीमा के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और सीमा हैरानी से उसे देखती रह गई। उसने दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, पर अभय ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा पीटते पीटते सीमा इतनी हताश हो गई थी कि दरवाजे पर ही बेहोश हो गई। आस्तिक जल्दी से सीमा के पास आता है। प्रणाली भागकर बाहर गार्डन एरिया में लगे नल से पानी लेकर आती है और इसी के साथ आस्तिक होश में आ जाता है। ये सपना वो था जो आस्तिक अक्सर देखा करता था, जब अभय ने सीमा को और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया था, किस तरीके से वो सब दर दर की ठोकरें खा रहे थे। आस्तिक का डरावना सपना एक फोन की आवाज से टूटा था। आस्तिक देखता है तो ये डॉक्टर की कॉल थी। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और डॉक्टर का कॉल रिसीव करते हुए कहा, जी डॉक्टर, क्या रिपोर्ट है? सामने से डॉक्टर ने कहा, जी हाँ राजा साहब, आपने जो बालों के सैंपल दिए थे वो मैंने चेक किए हैं। ये जिसके भी सैंपल थे उनका डीएनए आपस में मैच करता है, लेकिन इसके अलावा आपने जो दूसरे सैंपल दिए थे वो किसी से भी मैच नहीं निकला है। तो ये जो लड़की है 14-15 साल की, जिसका डीएनए मैच आपके साथ निकाला है, मैं इसकी रिपोर्ट आपके ऑफिस में भिजवा देता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी और उसका शक सही था। इसका मतलब मिश्री उसकी सौतेली बहन ही है। मिश्री अभय और शारदा देवी की औलाद है। उसके अंदर उन दो इंसान का खून दौड़ रहा है जिससे आस्तिक इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। आस्तिक फोन गप देता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, माँ, शारदा देवी की बेटी मेरी सौतेली बहन है, तो क्या करना चाहिए मुझे उसके साथ? क्योंकि उसके अंदर भी शारदा देवी का और उस इंसान का खून है जिसे इंसान कहलाने तक का हक नहीं है। जो आपके साथ हुआ है उसकी सजा जब उस इंसान को मिल सकती है और शारदा देवी को मिल सकती है, इसके साथ साथ मिश्री को भी तो मिलनी चाहिए ना। कैसे सजा दूं मैं मिश्री को? क्या मैं उसे किसी ट्रक के नीचे कुचलवा दूं या फिर किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले ग्राहकों को बेच दूं? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। मिश्री इतनी ज्यादा की भी हकदार नहीं है, लेकिन सजा तो उसे मिलनी है ना, आखिर वो भी शारदा देवी की बेटी है। ठीक है, फिर मिश्री के लिए कुछ अलग से ही सजा ढूंढता हूँ। मजा आएगा माँ, जब मिश्री तड़प तड़प के मर रही होगी ना, तब मुझे बहुत मजा आएगा। अपनी नफरत में आस्तिक डॉक्टर की पूरी बात को अपने दिमाग में बिठा ही नहीं पाया था। उसने सिर्फ मिश्री की बात पर ही फोकस रखा और उसे सजा देने के बारे में सोचने लगा। आस्तिक अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीधे किचन एरिया में जाता है। उसे अरुणिमा के खाने की खुशबू आ रही थी। वो सीधे किचन में जाता है तो देखता है अरुणिमा प्रणाली के लिए इटालियन बना रही है और ये देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो पीछे से अरुणिमा को बाहों में भर लेता है और उसे कहता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भूख लगने लगी है। अरुणिमा एक पल के लिए कांप जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि आस्तिक है तो वो फिर नॉर्मल हो जाती है। अरुणिमा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ठीक है, बस थोड़ी देर रुक जाइए, पहले प्रणाली को देकर आती हूँ, वरना इटालियन की जगह वो मुझे खा जाएगी। अरुणिमा प्रणाली की प्लेट लगाने लगती है कि तभी आस्तिक दूसरी प्लेट लेकर आता है और उसमें इटालियन डालने लगता है। अरुणिमा हैरानी से कहती है, ये दूसरी प्लेट आप किसके लिए लगा रहे हैं? आस्तिक मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखकर कहता है, जब तुम मेरी बहन की इतनी परवाह कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी बहन की जरा सी परवाह नहीं कर सकता हूँ? ये दूसरी प्लेट मिश्री के लिए है।